اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول السخلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارن. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی ففتھ مجلس، تربیت اولاد، ہاؤ ٹو اپ برنگ اور چائلڈ، جو اس قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں ہو رہی. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس میں انسان اور پتھر جلائے جائیں گے. سورہ تریم کی آیت ہے، یہ 66 سورہ نمبر ہے، کہ اللہ نے ویری کلیئر میسیج دیا ہم سب کو کہ خالی یہ ریلیکس ہو کے مت بیٹھو کہ تم دیندار ہو، تمہاری ذمہ داری صرف تمہارا اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسلام یہ بولتا کہ اپنے آپ کو بھی دیکھو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو. ایک جنریشن کو تم پروٹیکٹ کر لو، اس کے آنے والا جنریشن خود وہ لوگ پروٹیکٹ کریں گے. لیکن اگر میں صرف یہ سوچ کے زندگی گزار رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ دوسرے مذہب، یہ دوسری فکر ہے، یہ دوسری سوچ ہے. جتنے دوسرے ریلیجن ہیں ان میں یہ بالکل نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کی عبادت کے لیے بات کرتے ہیں. اسلام بول رہا کہ اولاد 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 اولاد. اور کل کی مجلس میں آپ نے سنا بی بی زینب کے بچوں کا. سوچو آپ کہ امام علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، بی بی زینب کی آغوش میں یہ بچے آنکھ کھولے. امام حسن امام حسین نے ان کا بچپنا امام حسن امام حسین کے ساتھ گزرا. اتنے کلوز فیملی ممبرس ہیں، اس سے زیادہ کلوز کیا ہوں گے کہ بی بی کے بچے ہیں. لیکن اس کے باوجود شب عاشور بی بی نے کیا کیا، ان بچوں کو موٹیویٹ کیا. کیا آن و محمد کو ضرورت ہے موٹیویشن کی؟ یہ سوال ہے. کیا آن و محمد کو موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ 1% بھی نہیں ہے ان کو ضرورت نہیں. ان کو پتا ہے کہ اسلام پہ اگر کوئی وقت آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بی بی زینب نے ان کو ظاہری طور پہ بات کر رہا، ظاہری طور پہ موٹیویٹ کیا. صرف ان کو موٹیویٹ نہیں کیا، ان عورتوں کو، ان ماؤں کو تربیت دی کہ میں اپنے بچوں سے اگنور نہیں ہوں، میں اپنے بچوں سے غفلت میں نہیں ہوں. میں زینب ہو کر اپنے بچوں کو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں غفلت میں نہیں ہوں. تو تم کو کیا ہوا؟ تم کتنا موٹیویٹ کرے؟ آپ انصاف سے بولو، ہم کتنا ٹائم دیتے اپنے بچوں کو؟ 5 منٹ دیتے ہیں؟ 10 منٹ دیتے ہیں؟ 15 منٹ دیتے ہیں؟ 24 آورس کی بات کر رہا. 24 آورس میں ہم کیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں، آج کے ماحول کو دیکھیں، یہ پورا سیناریو آپ کے سامنے کہ کس طرح آج اولاد تمہاری دوسری جگہوں پہ جا رہی، کس طرح اولاد تمہارے پرابلمس میں آ رہے، وہ ریزن کیا ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ وی ڈونٹ سٹ ود اور کڈس. اتنا گیپ ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کا. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا، 16-17 سال کا ہوتا، 16-17 ایئرس، یہ ٹین ایج ہے، بچوں کی ٹین ایج ہے. اس ٹین ایج میں ہم کتنی بیٹھتے، ماں کتنی دیر بیٹھتی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ، یا باپ کتنی دیر بیٹھتا؟ دن بھر آفس سے آئے، بچے کو اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ بولے تو خاموش بیٹھ کے سنے گا آپ کا. دین ہیل گو ٹو ہز روم اینڈ ہیل ڈو واٹ ایور ہی وانٹس. ہم کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا بار بار، میں پہلی مجلس سے بول رہا، اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ کس حالات میں اس وقت دنیا گزر رہی. باہر کے شہروں میں، باہر کے ملکوں میں جا کے دیکھو کہ کیا حالات ہو گئے، ایون ہمارے پاس کیا حالات ہو گئے، کہ کتنا گیپ آ گیا بچوں میں اور ماں باپ میں. جب تک آپ گیپ کو فل نہیں کریں گے، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ کلوز ہو جائے اپنی اولاد سے، انتہا سے زیادہ کلوز ہو جائے. माँ अपने बच्चों को हक करे, एवरीडे हक करे। माँ है, हक कर सकती। बाप है, हक कर सकता। बेटी को भी हक करे, बेटे को भी हक करे। क्लोज हो, जितना तुम क्लोज होंगे वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। उनके पास गैप लगाने, गैप मत करो। जो आज गैप है ना, उस गैप की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम हरा। मेरी कई यूथ के लड़कों से मेरी बात हुई, कई लड़कियों से मेरी बात हुई, वो लोग यही बोलते कि मौलाना हम क्या करना, हमारी माँ से हम फ्री नहीं, बाप से हम फ्री नहीं, एक हिजाब है, एक गैप है हम दोनों में कि हम बात ही नहीं करते। उसके बाद जो उसकी मर्जी में आया वो कर रही। एक स्टेज ऐसा आता आएगा कि वो आपके पास से, आपकी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग से अलग हो जाएगी, इसलिए कि उसका ज़्यादा जो वक्त गुजर रहा, औलाद का तुम्हारा ज़्यादा जो वक्त गुजर रहा वो पेरेंट्स के साथ नहीं गुजर रहा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गुजर रहा। कॉलेज को जा रही, स्कूल जा रही, अच्छा वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर आपके साथ बैठते, फिर अपने अपने रूम्स में चले आते, फिर अपनी अपनी लाइफ में चले आते। तो माँ बाप इतना गैप, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम चलते रहेगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो बोलेगा कि मुझे रिलीजन ही नहीं मालूम। और हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि 15 मिनट बैठ के रिलीजन की मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बात करो, ज़बरदस्ती मत करो। इस्लाम में लाइक रहा फिद्दीन है, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। आप मोहब्बत के साथ बात करो, डेली कोई ना कोई एक सेइंग बताओ, कोई ना कोई एक अच्छी बात बताओ। अच्छा करो, ये सब कुछ नहीं कर रहे तो डाइनिंग टेबल पर जब बैठते, डाइनिंग टेबल पर बैठ के जब एक मील साथ लेते, तो वो डिस्कशन इतना अच्छा हेल्थी डिस्कशन होना कि वो बच्चा वो उस टेबल के टॉक के लिए वेट करना, टेबल के डिनर के लिए वो वेट करना कि हम जब डिनर पे बैठेंगे अपने पेरेंट्स के साथ तो पेरेंट्स हमको अच्छी बात बताएंगे। कोई एज हो, 15, 16, 18, 20, कोई एज हो, वो डिस्कशन के लिए बच्चे वेट करना माँ बाप का कि आज मैं डैड के साथ बैठूंगी, आज मैं माम के साथ बैठूंगी, तो बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। हमारे डाइनिंग टेबल के डिस्कशंस क्या है, हमारे ड्राइंग रूम के टॉक क्या है, व्हाट वी टॉक, घर के माहौल को, जब तक माहौल को सही नहीं करोगे, आज आपको अंदाज़ा नहीं है। अल्लाह आपकी औलाद को प्रोटेक्ट करे, अल्लाह आपकी औलाद की हिफाजत करे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी औलाद बच जाए, इसलिए कि शैतान लगा हुआ है और दुनिया ईविल वर्ल्ड है, हर तरफ से हमले हो रहे, वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा। आज जो आप, मैं बोलना नहीं चाह रहा मेम्बर से, कि आज जो कम्युनिटी की हालत है, जो आज पूरी दुनिया में कम्युनिटी की हालत है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस हालत में। मैंने कहा ना एक मजलिस में कि ज़ियारत पे हमारे साथ थे, उसने कहा मैं नहीं जाती हरम को, I will not go, मेरा आज मूड नहीं है। क्यों आए भाई तुम ज़ियारत को, Why are you here? अगर तुमको 4 दिन के लिए करबला में, 3 दिन के लिए नजफ अशरफ में, एंड शी सेड आई एम नॉट कमिंग, Why? आज मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है तो देन Why are you here? तो तुम आने से पहले बच्चे को मोटिवेट करके क्यों नहीं लेके आए, वेयर आर यू गोइंग, तुम बता के क्यों नहीं लेकर आए कि जाना जा रहे कहां, हम ये टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे नहीं। जब तक तुम लोग प्लीज टाइम नहीं दोगे, औलाद को टाइम नहीं दोगे, औलाद के साथ बैठेंगे नहीं, यही डिजास्टर होगा फैमिली में, यही लाइफ होगी। वो अपनी मर्जी चलाएगी, फिर अपनी मर्जी से शादी होगी। कितने इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे, आप उसका अंदाजा है? वो साफ बोल रही, आई डोंट वांट टू मैरी। एक स्टेज ऐसा आ गया कि मुझसे कहा मौलाना कम से कम मुसलमान तो है, ये फीलिंग्स है। इन्हें तुम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं और चले जाए, मैं बहुत एहतियात से बोल रहा, खुल के नहीं बोलना चाह रहा मैं। फाइनली उन्होंने कह दिया कि मौलाना मुसलमान तो है, क्या करूं मैं, ये हालत है आज की। इसके लिए बार बार मैं स्ट्रेस कर रहा कि आज आपको अंदाजे, आज ही मुहर्रम में इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, आप क्यों आ रहे मजलिसों में, बिकॉज योर मदर हैज बॉट यू फर्स्ट, तुम्हारी मां लेकर आई थी, तो तुम भी तो लेकर आओ। तुम्हारी मां की वजह से आज तुम्हारे दिल में मोहब्बत आई, तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुमको इमाम अली मालूम हुए, करबला मालूम हुआ। माँ बाप ने किया ना, पेरेंट्स ने किया ना। अगर आज के पेरेंट्स इग्नोर करते बच्चों को तो ये हाल क्या होगा यहां पे? आपके बाद आएंगे वो लोग, अरे फातिहा पढ़ने नहीं जाएंगे। क्यों? उनको बताया नहीं गया डेली, आज 2 या 3 पॉइंट्स बोल रहा, डेली अपने बच्चों के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट, तुम्हारे जो बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक बच्चों को आदत डालो, आदत डालो। क्या आदत डालो? कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर डेली जब सुफरे पे बैठो, खाने पे बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक फातिहा पढ़ो, एक अलहम पढ़ो रोज। वो आदत होगी। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट यह होगा कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से पढ़ाएगी तुम्हारे लिए, ये तुमको गिफ्ट मिलेगा। उस वक्त तुम रोगे नहीं, आज आज नहीं रो रहे। क्यों? आज हाथ और पैर में ताकत है। नाउ यू कैन से, यू कैन टॉक। कल जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चे भूल जाएंगे तुमको। एक फातिहा नहीं होगी, एक अलम का सूरा नहीं होगा। एक मिनट होता अलम का सूरा, दो मिनट होते। अगर रोज तुम बैठ के पढ़ाए पूरे 24 आवर्स में एक दफा, 24 आवर्स में एक दफा बच्चे को पाबंद करो। डाइनिंग टेबल पे जब बैठो, डाइनिंग टेबल के जो एटिकेट्स है ना वो बताओ कि बेटा बैठ के आज हम इनके ऊपर फातिहा पढ़ेंगे। बच्चों को ये बोलो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कि आज तुम कोई सेइंग ऑफ मासूम मुझे बताओ, सेइंग ऑफ इमाम अली बताओ। लड़की को पूछो, लड़के को बोलो, तो वो क्या करेगी? नेक्स्ट डे याद करके आएगी, नेक्स्ट डे पढ़ के आएगी। बोलो एक लाइन की सेइंग बोलो आज। और छोटे बच्चों को भी बताओ, ये जो मासूम बच्चे बैठे हुए ना, इनको भी मोटिवेट करो। बोलो अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये गिफ्ट दूंगा, तुम ये करोगे तो तुमको मैं ये दूंगा। डेली डाइनिंग टेबल पे बैठ के मुझे एक इमाम अली की सेइंग बताओ, वन लाइन की सेइंग। तो उनका जहन भी खुलेगा, उनको एक एक्साइटमेंट भी होगा कि हमको गिफ्ट मिलेगा, उनको ये भी फिक्र होगी कि मैं मौला की सेइंग। देन इमाम अली से उनका रिलेशन बिल्ट होगा, वो अपने रिलीजन में मजबूत होंगे। डेली अगर एक सेइंग तुम बच्चों को सिखाओ, सबके पास इंग्लिश में नेजुल बलागा, सबके पास स्मार्टफोन्स है, कोई बुक खोलने की भी जरूरत नहीं। स्मार्टफोन पे जाके नेजुल बलागा निकालो, गूगल पे सेइंग्स निकालो, लास्ट पार्ट ऑफ द नेजुल बलागा निकाल के बच्चे को बोले बेटा आज तुमको सुनाना है, कल लड़की को बोले लड़की बेटा तुमको कल सुनाना है। तो वो लोग तैयार होके आएंगे। तो डेली आपके घर का माहौल क्या होगा? आपके घर में रिस्क का प्रॉब्लम कितना दूर होगा? आपके घर में बरकत कितनी होगी? आप एक बच्चे को तैयार करें। एक बच्चे को तैयार नहीं करें, पूरा उस एक जनरेशन को आप तैयार करें। एक जनरेशन तैयार हो रहा, कितने अगर रोज आपने सिखाया, एटलीस्ट एंड ऑफ द ईयर, मैं 365 डेज नहीं बोलता, एंड ऑफ द ईयर अगर 100 सेइंग्स तुम्हारा बेटा याद कर ले और तुम्हारी बेटी याद कर ले, तो इससे बड़ा तुम्हारा अचीवमेंट क्या है? इस तरह तो याद कराओ खाली। उसके बाद कुरान मजीद की तरफ जाओ, छोटी स्मॉल आयत। बच्चे को बोलो बेटा आज डाइनिंग टेबल पे बैठ के तुमको आयत पढ़ना है, एक आयत पढ़ना, जस्ट वन आयत। या वीकली बोलो एक आयत याद करके तो सुनो, तो कितने आयत याद हो गए? तुम्हारा माहौल कैसा हो गया, तुम्हारी औलाद कैसी होगी, देन ही विल नॉट गो हियर एंड देयर। वो कभी नहीं जाएगा। और अगर तुमने ये कर लिया तो समझो तुमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं। टुमारो एटलीस्ट यू कैन से टू योर इमाम के मौला जैसा माहौल आप चाहते थे वैसे माहौल मैंने रखा घर का, इसलिए कि यही औलाद। और आप यकीन करो, मैंने मेरी पहली मदीस याद है, मैंने वो बिस्मिल्लाह का वाक़या पढ़ा था, इतना सी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सभी बोलते, लेकिन एक दफ़ा बोलने से बाप को फ़ायदा हुआ, बाप को फ़ायदा हुआ। नीचे उस वक्त बाप को ये एहसास हुआ होगा कि काश मैं अपने बेटे को और सिखाता, वो तो जब छोटा था। लेकिन अगर आज तुमको एहसास नहीं हो रहा, जब हम भी मरेंगे ना, तो उस वक्त अगर मेरी औलाद रोज 10 मरतबा सलवात पढ़े और पढ़ के बोले मैं अपने डैड को जो है बख्श रही, कितना सवाब है, कितना फायदा है, तो तुम्हारा जनरेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा। हमेशा रिलीजन से अटैच रहना, रिलीजन से दूर नहीं रहना, कभी नहीं रहना रिलीजन से दूर। घर का माहौल ऐसा बनाना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स बैठ के बात करना। ऑलवेज यू हैव टू टॉक टू योर किड्स, ऑलवेज यू हैव टू टॉक। गैप को खत्म करो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये जो गैप है ना आज हमारे पास, वो गैप की वजह से ये प्रॉब्लम है। बच्चे बड़े होने के बाद बात नहीं करते, बच्चे बड़े होने के बाद सुनते नहीं। आज तुम्हारा हाथ पकड़ के मजलिस में आ रहे, लेकिन वंस ग्रोन अप बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास जाना है, मेरे पास ये काम है मेरा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर, जैसा मुहर्रम आ रहा, आप औलाद को बचपने से ही उनके दिमाग में यह बात डालना कि फर्स्ट एटलीस्ट बोल रहा एटलीस्ट फर्स्ट 10 डेज हम बच्चों को मजलिस में जाना है। कितने बच्चे हैं जो घरों में बैठे हुए, उनको जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि बचपन से आई नहीं मजलिस में। सात मोहरम को निकल के आ जाएंगे, अशूरे को निकल के आ जाएंगे, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए आ जाएंगे। ये नुकसान किसका है? डिजास्टर है लाइफ में, सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं। आज आप इजी ले रहे, आज बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कल समझ में आएगी तुमको। लिटरली अपने हाथों को काटो मत, अपने रिश्ते को तोड़ो मत, जितना हो सके मजबूत तरीके से अपनी औलाद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी औलाद को देखकर इमाम बोले कि ये मेरे लश्कर का सिपाही बन सकता। समझ में आई मेरी बात? आप इंसाफ से बोलो कि हम कभी यह बात सोचते कि मैं अपने बेटे को इमाम के लश्कर का सिपाही बनाऊं? कभी नहीं सोचते। हम नहीं बनना चाहते तो बेटे को क्या बनाएंगे? दुआ तो कर रहे, दुआ फर्ज पढ़ते बोलते अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल, मौला आइए मौला आइए मौला आइए, फिर बोलते अस्सा 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 राइट नाउ, अभी आइए। मौला बोलते होंगे कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ये कैसा बोल रहा है कि अभी आइए। इमाम का नाम आया, सर झुका के खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है, खड़े रहना चाहिए, बट खाली खड़े रहना काफी है? मैं आपसे बोल रहा, क्या खड़े रहना सिर्फ काफी है? क्या हम इमाम के लिए कोई तैयारी कर रहे कि कल इमाम आएगा तो मैं कुछ करूंगा इमाम के लिए? कोई तैयारी नहीं है इसके लिए। औलाद को इतना इतना दीनदार, मैं ये नहीं बोलता मौलवी बनाओ, आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम दीनी मदरसे में भेजो, आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको मौलवी बना दो, ये भी नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा एटलीस्ट हुसैन और अली का चाहने वाला बना दो। क्या बोल रहा यार मैं बोल रहा कि मौलवी बनाओ? नो, इस्लाम भी नहीं बोलता पूरों को मौलवी बनाओ बोल के, इस्लाम बोलता डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छा एजुकेशन दो, लेकिन इस्लाम ये नहीं बोल रहा कि सबको मौलवी बना दो। क्यों? जरूरत नहीं है पूरों को बनना, तुम स्टार्ट थोड़ी उससे करो। मैं बोल रहा थोड़ा माहौल, मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर में कोई एंटर हो तो लोगों को पता चले कि मैं एक अली वाले के घर में एंटर हो रहा, फील तो हो आने वाले को, अगर मेरे घर में मैं एंटर और म्यूजिक चल रही तो वो उसको एंटर उसको पता चल रहा, सामने वाले का क्या होता। ये सारे इश्यूज अगर तुम दीनदार बनाओगे ना तो कोई लड़की मिक्स गैदरिंग से रुखसत नहीं होगी। शादी हमारी कैसे हो रही, मौलाली ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं, इमाम अली ने क्या कहा, दीनदार फैमिली से करो, उस वक्त सोचोगे उनके घर में इस्लाम है या नहीं। आज हमारी शादियां क्या है, कितनी मिक्स गैदरिंग्स है, मिक्स मैरिजेस है, कितनी मिक्स मैरिजेस, हम चाहते ही नहीं। कभी कर्टन डाला कि लेडीज उधर जेंट्स इधर, एक ही जगह दोनों लड़का लड़की स्टेज पे खड़े रहकर सबको रिसीव कर रहे। आप सोचो मैं क्या बोल रहा, क्या मौला राजी हो रहे? फिर ये नमाज क्या है, फिर ये रोजा क्या है, फिर रमजान के इतने सख्त रोजे, कुरान पढ़े कई के लिए पढ़े, फॉर व्हाट? If we are not learning, if we are not doing anything, for what then we are doing all this? Check karo main kya bol raha. Ek hi stage se tum rukhsat kar rahe. And humko koi feelings hi nahi hai. Koi feelings nahi hai. Khali donations dene se ya khali namaz padhne se Islam pura nahi. Tum pure Islam ki ek cheez pe amal karna hai. Aisa nahi hai ki main ye cheez lunga, ye cheez nahi lunga. इस्लाम की ये चीज मुझे पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। आखिरी जमाने के साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम जो है ना, साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम जो है, उसमें ये है कि आखिरी जमाने में शिया मेरे मौला का जुमला है कि मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरे चाहने वाले, इस्लाम वो लेंगे जो उनको सूट करेगा, वो इस्लाम नहीं लेंगे जो कंप्लीट इस्लाम हुसैन ने दिया है। वो मैं इस्लाम लूंगा जो मुझे सूट कर रहा, मुझे ये सूट कर रहा, मैं ये इस्लाम का पिक कर रहा, मुझे ये सूट करना, मैं ये पिक कर रहा। इस्लाम इसका नाम नहीं है शरीयत इसका नाम नहीं है। हुसैन ने इसलिए इतनी जंग नहीं लड़ी। आप सोचो एक ऐसे माहौल में मौला हुसैन ने शियत को अपने पूरे बच्चों को कुर्बान करके सेक्रीफाइस करके अली अकबर जैसे बेटे को कुर्बान किया सिर्फ इस्लाम के खातिर, टू सेव इस्लाम, पूरी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये मुहर्रम क्या है? मौला हुसैन के उस सेक्रीफाइस की याद है ना। तो अब मौला उन माओं से नहीं पूछेंगे कि मैंने तो सब कुर्बान कर दिया इस्लाम को बचाने के लिए, एंड व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। जो मैं बोल रहा ठंडे दिल से सोचो, घर जाके सोचो, 5 मिनट सोचो आबिद बिलग्रामी ने आज क्या कहा, सोचो तुम्हें क्या बोल रहा। कल टुमारो इफ इमाम आस्क यू कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, क्या किया तुमने इस्लाम के लिए, मुहर्रम आया ये साल मुहर्रम में तुमने क्या गिफ्ट दिया, आज ये साल मुहर्रम में हमको कोई तोहफा देना है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं इमाम हुसैन को, व्हाट आर वी गोइंग टू गिव इमाम हुसैन, कुछ देने वाले हैं? आप बोलेंगे हम क्या देंगे, मौला आपसे पैसे मांग रहे, दौलत मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। ही इज नॉट आस्किंग यू एनीथिंग। वो एक ही चीज बोल रहे कि फॉलो द इस्लाम, फॉलो माई पाथ, मेरे रास्ते पर चलो। He is not asking you anything. He is just asking के बाबा सुनो, तुम मेरे साथ रहो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, थोड़ी देर तुम कम से कम करो यार। इससे फायदा मैं बताऊं, इसका बेनिफिट बताऊं। जैसे आज फर्स्ट थर्सडे मुहर्रम की, साल की पहली जुमेरात है आज, हजारों लाखों मिलियंस की तादाद में लोग थर्सडे नाइट, यू नो थर्सडे नाइट जो है मुर्दों की रात होती, मरुमीन की रात होती, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी औलाद की, यह रात हजारों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में बॉम्बे के जो सेमेट्रीज है वहां पे आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स दफन है। आज दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू कि थर्सडे नाइट वो लोग मुझे क्या देते। अगर तुमने कुछ नहीं भेजा तो लिटरली वो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे घर के दरवाजे पे आते, बैंड्रा में रहो, जू में रहो, डोंगरी में रहो, गोवंडी में रहो, कहीं रहो, दे कम टू योर हाउस, आपके घर आते बेटे के बेटी के आधी रात के बाद। आज 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 टुनाइट बोल रहा, आके लिटरली बैक करते बैक करते बैक करते बैक करते। तुम्हारा डैड मर के 25 साल हो गए, तुम्हारी माँ मर के 50 साल हो गए, डजंट मैटर, जब तक तुम जिंदा हो थर्सडे नाइट वो तुम्हारी घर पे आएंगे। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ। वो लोग आते, अल्लाह के रसूल से ये हदीस है, सरकार की हदीस है, मशहूर हदीस है, मैंने भी बहुत पढ़ा है पहले, मशहूर तरीन हदीस है। क्या कि जुमे थर्सडे नाइट गुजरी, जुमे की सुबह आई, जब जुमे की सुबह में आई तो मुसलमान जब मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद नबवी में, तो मेहराब पे रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और बैठ के रो रहे थे। अभी फजीर का वक्त नहीं आया था, फजीर को थोड़ा टाइम था। मुसलमान जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अल्लाह का रसूल, कायनात का मालिक, आलमीन का रहमत बन के आने वाला बैठ के रो रहा। मुसलमान घबरा गया। उस वक्त मस्जिद नबवी इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी, इट वॉज़ वेरी स्मॉल मॉस्क। बैठ के रो रहे तो जाके हाथों को जोड़ के पूछा, या रसूलुल्लाह क्या हो गया, सब खैर तो है, किसने रुलाया आपको? वो लोग समझे कोई वाकया हो गया, कोई तकलीफ हो गई, घबरा गए मुसलमान। कहने लगे ये सुन्नी शिया सारी किताबों में ये हदीस है। पूछा गया क्यों रो रहे, क्यों रो रहे, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। लोग रोने लगे रसूल को देख के कि अल्लाह का रसूल रो रहा बैठ के, और कैसा रो रहा, हिचकियों से रो रहा। तो लोगों ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, तो सरकार ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। पूछा क्यों रो रहे आप, किसने रुलाया? जब पूछा किसने रुलाया तो उस वक्त कहा तुम्हारे मरहूमीन ने मुझे रुलाया, तुम्हारे बाप ने मुझे रुलाया, तुम्हारी माँ ने मुझे रुलाया, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे रुलाया। लोगों ने कहा वो लोग तो मर गए, उन लोगों ने आपको कैसे रुलाया, उन लोगों ने आपको कैसे रुलाया। अब रसूल की हदीस है, वर्ड्स रसूल के है, मफहूम मेरा है, मैं अपने स्टाइल से बोल रहा हूं रसूल ने क्या कहा, मफहूम वही है जो रसूल ने कहा। लोगों ने कहा मेरा डैड को मर के 10 साल हो गए, आपको आज क्यों रुलाया, कैसे रुलाया, मिसाल दे रहा मैं। तो रसूल ने कहा कि तुम तो अपने बिस्तर पे सो रहे थे, तुम तो अपने नरम तकिए पे, नरम पिलो पे सर रख के सो रहे थे। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़े रहकर, तुम्हारी बूढ़ी माँ हाथ को ऐसा करके कह रही थी, ए मेरे बेटे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मैं भूखी हूं, थोड़ा सदका दे दो, सदका दे दो। रिवायत का जुमला है, अल्लाह का रसूल कहता एक पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, क्या वैल्यू है बॉम्बे में पीस ऑफ ब्रेड की, इतना टुकड़ा रोटी का, इतना टुकड़ा कोई वैल्यू है का पीस ऑफ ब्रेड। अगर तुम इस वक्त जानवर के सामने डाल दो, थर्सडे नाइट वो पीस ऑफ ब्रेड से हमको फायदा होगा, हमको पता है। अगर औलाद दीनदार है, तुमने औलाद को सिखाया, औलाद को बताया, तो वो कंटिन्यू करेगी तुम्हारे बाद। तुमको रिलैक्स होकर नीचे बैठना है, इसलिए कि तुमने एक इन्वेस्टमेंट किया है औलाद का। तो इस आप खुद सोचो मैं क्या बोल रहा, कोई पूछने वाला नहीं है यार, कोई पूछने वाला नहीं है नीचे, यू विल बी ऑल अलोन। अगर आज मैं कुछ नहीं करता अपनी औलाद के लिए, ये जो सच्चे स्मॉल थिंग, क्या करना है आज, फर्स्ट नाइट है, फर्स्ट थर्सडे ऑफ द ईयर है। अगर ज्यारत इमाम हुसैन तुमने पढ़ी है तो फाइन, नहीं पढ़ी है तो घरों को जाके, व्हेन यू गो होम रिजवी से बिफोर यू गो टू बेड 5 मिनट निकालो, 5 मिनट। बच्चों को लेके, जो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं ना, माओं को चाहिए कि जब भी कोई इबादत करे बच्चों के साथ करे, बच्चों के साथ करेंगे तो ये लड़का लड़की वेट करेगी नेक्स्ट उसके लिए, और बोलना कि बेटा मेरे साथ खड़े रहो। लड़का लड़की को खड़ा करो, अपने छोटे स्मॉल बच्चे, ये एज के बच्चे 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको लेके खड़े रहो, खड़े रह के आज की रात व्हेन यू गो होम 5 मिनट निकालो। आई एम जस्ट आस्किंग 5 मिनट्स फ्रॉम यू, 5 मिनट्स। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा आपको, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। बच्चों को लेकर, तुम्हारी औलाद को लेकर हक करके, मालूम है बच्चा इजी तरीके से नहीं आएगा, उसको प्यार करो, माँ प्यार करे, हग करे, किस करे, बोले बेटा 4-5 मिनट्स खड़े रहो। थर्सडे आई और बच्चों को लेके खड़े हो जाओ, साल भर राउंड द ईयर, और ज्यारत इमाम हुसैन पढ़ो 5 मिनट की, वारिसा पढ़ो, कितनी देर होती, हार्डली 5 मिनट्स ये। और पढ़ो तो ये नियत करके पढ़ो कि आज थर्सडे नाइट है, मैं अपने मरहूम बाप, अपनी माँ, अपना भाई, अपना बहन, अपनी बहन, औलाद, जो भी आपके मरहूमीन हैं, उनके लिए मैं ये ज्यारत पढ़ी। और बच्चों को बोलो बेटा तुम्हारे जो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, उनकी तरफ से उनके बिहाफ में हम सलाम कर रहे हैं, एंड एक्सप्लेन टू देम कि देखो ये ज्यारत पढ़ने से तुम्हारे मरहूम बाप को सवाब मिलेगा, तुम्हारे ग्रैंड फादर को सवाब मिलेगा। जब उसके जहन में बात आएगी ना, जब तुम चले जाओगे, आज नहीं कल नहीं 10 साल 20 साल के बाद तो जाओगे ना, 20 ईयर्स के बाद तुम जब चले जाओगे, तो यही औलाद तुम अपनी औलाद को लेकर तुम्हारे लिए ज़ियारत पड़ेगी, उस वक्त पड़ेगी। फायदा किसका है, फायदा आपका है। और अगर आपने भुला ही दिया, जरूरत ही नहीं है करने की, थर्सडे वेंसडे की तरह गुजारा, फ्राइडे की तरह गुजारा, तो फायदा क्या, वीकेंड नहीं है। अगर वही काम किया इमाम के लिए, तो बच्चे के दिल में जो एक जज्बा आता, ये साइकिल बन जाएगा, फिर वो अपनी औलाद को कराएगा, वो अपनी औलाद को कराएगा। तो जब तक ज़ियारत हुसैन होती रहेगी, अजर तुमको मिलेगा, उस वक्त तक रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। मेक श्योर बच्चा बड़ा हो गया, उसको बोलो ये पेरेंट्स का काम है कि बैठ के बात करें, डिस्कस, वरना ऐसा डिजास्टर है, ऐसी तकलीफ है। मैं, मेरी टॉपिक मौत नहीं है, वरना मैं बताता आपको कि क्या हालत है नीचे, कोई पूछने वाला नहीं है, खाली इमाम अली का ये सेइंग अपने गले में तावीज बना के डाल लो। इमाम अली दुनिया को एड्रेस कर रहे, दुनिया को, जो जिस दुनिया के चक्कर में हम पड़े हुए ना, जो वर्ल्डली अफेयर्स में हम इन्वॉल्व है ना, जो दुनिया से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ना, उस दुनिया को अली एड्रेस कर रहे। क्या बोल के एड्रेस कर रहे, पूरा मस्जिद कूफा भरी हुई है, फुल मस्जिद कूफा, इमाम अली का सरमन है, इमाम अली खड़े रह के दुनिया को, पूरी वर्ल्ड को एड्रेस किया, एक जुमले में लोगों ने पूछा, मौला दुनिया का मजा क्या है, दुनिया का टेस्ट क्या है, क्या टेस्ट है दुनिया में? अली ने कहा, सुनना चाहते हैं दुनिया क्या है, दुनिया का टेस्ट क्या है? अली ने एड्रेस करते हुए कहा, क्या है दुनिया? इमाम के जुमले सुनो, इमाम के जुमले गौर से सुनो। अली ने कहा, ए दुनिया, तेरा टेस्ट, तेरा जायका, तेरा मजा इतना कम होता है कि जबान पर मजा रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। क्या समझे आप? एक आप मिसाल के तौर पे कोई एक चीज आप जबान पे रखो, कोई एक पीस आप जबान पे रखो, कोई स्वीट, कितनी देर रहता टेस्ट उसका, कितनी देर रहता टेस्ट? फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद दूसरा टेस्ट आ जाता। परमिनेंट कोई टेस्ट जबान पे नहीं रहता, फ्यू सेकेंड्स के लिए एक टेस्ट आता, टेस्ट खत्म हो जाता। जैसे ही वो लुकमा आपके पेट के अंदर गया, ये टेस्ट खत्म हो गया, फिर आप दूसरा लुकमा रखो, दूसरा टेस्ट आएगा, राइट? तो इमाम अली यही समझा रहे कि पूरी तुम्हारी लाइफ जो है ये इस तरह है, एक टेस्ट की तरह है कि फ्यू सेकंड में पूरी जिंदगी खत्म होती। नबी नूह सबसे ज्यादा जिंदा रहे दुनिया में, 2000 ईयर्स की रिवायत भी है, 1500 ईयर्स, इमेजिन करो 1500 साल नबी नूह इस जमीन के ऊपर थे, जिंदा थे। 1500 साल के बाद जब मलकुल मौत उनके पास आया तो पूछा क्यों आया, तो मलकुल मौत ने कहा कि नबी खुदा बहुत दिनों के चले, लेट्स गो। 1500 ईयर्स के बाद नबी ने कहा ओके आई एम रेडी, तो मलकुल मौत ने कहा मैं आपकी रूह लेने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। नूह ने कहा पूछो। कहा कि अब तक, वो उस जमाने में कह रहा, अब तक सबसे लंबी जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है, पूरी एक 1500 ईयर्स का एक्सपीरियंस क्या है, आपने स्पेंड कैसे किया, क्या मेमोरीज है आपको 1500 साल के? सोचेंगे, बिलीव करोगे? नूह ने क्या किया, जब मलकुल मौत ने पूछा कि आई जस्ट वॉन्ट टू नो द मेमोरीज, वो मेमोरीज चाहता कि आपकी क्या मेमोरीज है 1500 ईयर्स लाइफ में रहे। हम 50-60 साल, 70 साल, 80 साल रह गए, 90 साल रह गए तो हो गया बहुत हमारा, 1500 साल क्या मेमोरीज है? तो नूह धूप में खड़े हुए थे, साये में आ गए, कहा कभी धूप थी कभी साया था, पूरे 1500 साल गुजर गए, ये लाइफ है तुम्हारी। इस लाइफ के चक्कर में हम पड़े हुए, वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर औलाद दीनदार होगी, तुम्हारा जैसे बॉम्बे में तुमको कंफर्ट था, जुमले मेरे गौर से सुनो, जैसे बॉम्बे में तुम बड़े घर में रहते थे, सेंट्रल एयर कंडीशन था, बिल्कुल कार और बड़ा कंफर्ट के साथ तुम रहते थे ना, इससे 1000 times कंफर्ट तुमको नीचे मिलेगा अगर तुम्हारा बेटा दीनदार हो जाए, बेटी दीनदार हो जाए, बेटी इस्लाम पर रहे या बेटा इस्लाम पर। अल्लाह इससे कहीं ज्यादा तुमको नीचे अता करेगा। सूरह रहमान मशहूर सूरह है ना, जाके ट्रांसलेशन पढ़ो, सूरह रहमान का ट्रांसलेशन पढ़ो, देन यू विल नो कि अल्लाह क्या वादे कर रहा। सूरह रहमान में अल्लाह वादे कर रहा, मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। किसको दूंगा? जो काम करेगा, जो दीन पे अमल करेगा, जो वाजिबात को पूरा करेगा। हमारे पास बेस्ट चीज क्या है? विलायत इमाम अली तो है हमारे पास, हमको फिक्र नहीं, मौला हुसैन की मोहब्बत है, लेकिन अगर तुम ये मोहब्बत को ट्रांसफर नहीं करोगे औलाद में, तो फिर क्या होने वाला है? इट इज द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, ये मॉरल तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम विलायत इमाम अली को, आजादारी है हुसैन को, अपनी औलाद में ट्रांसफर करना। क्यों ट्रांसफर करना? इसलिए ट्रांसफर करना कि ये जो तुम्हारे पास भी आई वो तुम्हारे माँ बाप की तरफ से आई, तुम्हारे माँ बाप की मेहनत थी, माँ बाप का काम था, माँ बाप का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने तुमको ये ट्रांसफर किया। और अगर तुमने आज ट्रांसफर कर दिया और तुम्हारी औलाद दीनदार निकल गई, बस, तो इसके लिए पहली चीज जो है घर का एटमॉस्फियर, घर का माहौल। घर में सबसे पहली चीज रिस्क है हलाल। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस करता, इसीलिए मैं स्ट्रेस करता कि रिस्क है हलाल के बारे में मौला हुसैन ने कहा और आशूरे के दिन कहा, कि रिस्क है हलाल कमाओ, रिस्क है हलाल कमाओ। मैं आपको छोटी चीज बोलता यार, छोटा एग्जांपल देता कि करबला मौला से कफन सब लेकर आते, जो ज्यारत पे जा रहा कफन लेके आ रहा, लाओ बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर कोई नहीं है कि एटलीस्ट लास्ट ड्रेस्ट तो कफन हमारा करबला का हो, वो बख्शिश का सहारा है। सब जरियों से मस्कर किया, सब लेकर आ रहे। हम काफिले में देखते चार चार पांच पांच गिफ्ट्स ला के देते करबला के का। मैं इतने बड़े मजमे से पूछता, जब करबला का तुम कफन लेके आते तो तुम ये जिस पैसे से लाते उसका खुम्स देते? कभी ये फिक्र हुई कि मैं जो कफन ला रहा वो पाक पैसे का है या विदाउट गिविंग खुम्स पैसे का है? कितने का कफन है करबला का? 2000 रुपए का, जस्ट 2000 रुपीज, मैक्सिमम 3000 इंडियन रुपीज की बात कर। इंडियन 3000 में बेहतरीन कफन मिलता करबला मौला का। 3000 पे कितना हुआ खुम्स? सिर्फ 600 रुपए, 600। 600 की कोई वैल्यू है बॉम्बे में? क्या वैल्यू है 600 की? दो लोग जाएंगे खाना खाएंगे खत्म हो जाएगा, 600 की तो उतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। तुम वो 600 नहीं निकाल रहे, कभी निकाले खुम्स के कफन के? ये मेरे कफन का खुम्स का पैसा है क्यों? हमको मालूम ही नहीं। तुम नहीं निकालोगे तुम्हारी औलाद निकालेगी? कभी नहीं निकालेगी। और ये काम जब भी खुम्स, प्लीज गौर से सुनो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मदी, सॉरी अब ये पूरे इंपॉर्टेंट डेज आ रहे, जब भी तुम खुम्स निकालो बेटा और बेटी को सामने बिठाओ, बात करके बोलो बेटा ये हम वी आर टेकिंग आउट दिस 20%, दिस इज इमाम सख। बच्चे को जब तुम खुम्स निकाल रहे बच्चे के सामने निकालो, औलाद के सामने, तो उसके जहन में आएगा कि खुम्स कोई चीज है, मेरा बाप निकालता था मेरी माँ निकालती थी। तो वो भी अपनी, जब वो अर्न करेगा, जब वो जॉब करेगा, जब वो बिजनेस करेगा, तो उसको एहसास होगा, बैक ऑफ हिज माइंड चलेगा कि मेरी माँ की एक डेट थी, मेरे बाप ने एक डेट फिक्स की थी और मेरे माँ बाप ने खुम्स निकाला था। खुम्स से उनको बताओ कि बेटा वाई वी टेक दिस, दिस इज हक ऑफ इमाम, ये इमाम का हक है, हम उसका निकाल के हम ये 50% सहमे इमाम निकाल रहे, 50% सहमे सादात। उनको बताओ बेटा ये जो कफन है ना, अगर मैं आज मर गया तो तुमको बेटे को बोलो कि तुम ये कफन मेरे बॉडी पे रैप करोगे ना, तुम लेके जाके दोगे ना, मैं तो रैप, बच्चा तो रैप नहीं करेगा, इसलिए कि तुमने इतना डरा के रखा है कि वो मौत के करीब भी नहीं जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सुना तो बच्चे को ये बोलो, प्लीज यार गौर से सुनो, बच्चे को ये बोलो कि बेटा ये जो बोई में कफन है ना, मेरा लास्ट ड्रेस है, लास्ट ड्रेस, ये ड्रेस जब लोग मांगेंगे मुझे गुसल के बाद तो तुम उनको ये कफन दे देना, मैं करबला से ला, करबला से जब खरीदो तो मस करके बच्चों को बताओ, बच्चों से मस कराओ, कफन को बोलो, बच्चे को बोलो मेरे सामने मस कर, उसको आदत हो जाए, हर काम में बच्चों को इन्वॉल्व करना, दीनी काम में, हर काम में इन्वॉल्व करना, बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो, अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व करते हो, बोलते हो यार ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, यही मेरे बात तो यही बिजनेस संभालेगा, यही बोलते हो ना, दीन के मामले में क्यों नहीं करते? खाली बिजनेस बता दिया, दीन नहीं बताया। तो बच्चे को बताओ ये कफन है, ये लास्ट ड्रेस है मेरा, ये माँ की जिम्मेदारी है, औरतें मेरी आवाज सुन रहे, अल्लाह तुमको सलामत रखे। औरतों को बोला आपको नहीं, अल्लाह मोमिनीन की सलामती और इमाम की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। समझ मौला आबाद रखे। बस तो बच्चों को बताओ कि बेटा ये कफन है, उस जब कफन तुम लाए करबला मौला से, लाके रैप करके जब अलमारा में रखा, कबर्ड में रखा, तो रखने से पहले खुम्स दे दो, बच्चों के सामने देना। क्यों? उसको एहसास होगा कि ये कफन के पैसे निकालना है। जब वो जाएगा, वो बड़ा होगा, तो वो बोलेगा कि मेरा बाप ने खुम्स निकाला था, और ये खुम्स है वो बात करेगा, इसलिए कि इनकी मेमोरी में जब ये बातें आएंगी ना, इनके दिमाग में जब ये बातें रहेंगी ना, फॉर एवर रहेंगी। मासूम बच्चों के दिमाग में जब कोई बात बचपने की आ जाती वो जाती नहीं। तो बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन अमल क्या है कि बच्चे को आप हर दिन के काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर घर पर मिंबर स्टार्ट कर रहे हैं, मिंबर सजा रहे, बच्चों से अलम सजवाओ तो बच्चे के जहन में आएगा। बेटी से कराओ और ये बोलो कि बेटी तू अपने घर जब जाना तो तू अपने घर में अलम इस्तात करना, जब कुरान पढ़ना तो खोल के पढ़ो। बच्चे छोटे बच्चों को सामने बिठाओ, 10 मिनट बिठाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 आवर्स बिठाओ, मैं 5 मिनट मांग रहा, 5-5 मिनट से स्टार्ट करो यार। 5 मिनट्स क्या चीज होते, 5 मिनट 24 आवर्स में 5 मिनट्स बच्चे को बाजू बिठाओ और बड़ी अच्छी बात करो। कुरान पढ़ रहे तो बोलो बेटा दिस इज होली बुक, ये अल्लाह ने किताब है, ये होली बुक है, ये प्रॉफिट के ऊपर आई है, हमको एक लाइन पढ़ेंगे। बच्चे के साथ एक लाइन पढ़ो, उसको आदत होती। घर का माहौल देखिए, 24 घंटे वो खेल रहा खेलने दो, 24 घंटे कंप्यूटर पर रहता कंप्यूटर पर रहने दो, लेकिन अगर तुम्हारे जो 5 मिनट जो तुम स्पेयर कर रहे ना, ये 5 मिनट स्पेयर नहीं कर रहे तुम, आप उसकी पूरी जिंदगी को, उसकी डेस्टिनी को बदल रहे, और वो डेस्टिनी तुम्हारी बदल रही। कि जब भी वो खुम्स को निकालेगा, जब भी कुरान पढ़ेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारी उसको उसकी माँ याद आएगी। अब आप मिसाल के तौर पर कुरान पढ़ रहे, रोज एक रुकू पढ़ रहे, एक पेज पढ़ रहे, खाली एक पेज पढ़ के बंद मत करो कुरान। तुम क्या करो, अपने बाप को इसको हदिया कर दो, अपनी माँ को हदिया कर दो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हदिया करो। क्यों, एक पेज में, एक पेज बोल रहा, जस्ट वन पेज अगर आप कुरान पढ़ते, चलो वन पेज तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर मिसाल के तौर पे तुम घर में बैठ के सलवात पढ़े, खाना जब शुरू करो, घर के माहौल बता रहा मैं कि कैसा करना, हाउ टू डू इट वो बता रहा मैं। डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हुए, आप बच्चे को बोलते कि से बिस्मिल्लाह, ही ऑलवेज सेज बिस्मिल्लाह। पेरेंट्स की आपको आदत डालना कि बेटा से बिस्मिल्लाह बिफोर यू स्टार्ट द फूड, बच्चा बैठ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला, उसके बाद एक मिनट का मैं अमल दे रहा, क्या बोला उसके बाद, बेटा जस्ट से वन टाइम सलवात। कितनी देर होती वन टाइम सलवात में, सेकंड, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बेटे ने बोला। अब उसके बाद बोलो बेटा जस्ट से कि अल्लाह इसका सवाब मेरे ग्रैंड 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 पेरेंट्स को दे दे। यार तुम तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या रहमत उस वक्त आती है, एक मासूम बच्चा एक सलवात पढ़ के अपने मरहूम बाप पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे एक सलवात पढ़ा, एक सलवात एक सेकंड का पढ़ के वो बोले कि अल्लाह मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे रिश्तेदारों को इसका सवाब पहुँचे। आप यकीन करो मेरी बात पे, जाके चेक कर लेना, एक सलवात का सवाब काउंटलेस अल्लाह की रहमत आती है, काउंटलेस। वो घर में कभी परेशानी नहीं आ सकती, उसका रिस्क कभी रुकता नहीं। जो बिफोर खाने के, खाना खाने से, लुकमा तोड़ने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और एक सलवात पढ़ेगा, ये एक बिस्मिल्लाह से और एक सलवात से कितने फायदे हो सकते, कितना सवाब मिल सकता। ये नहीं है कि अगर तुमने बिस्मिल्लाह बोला तो अल्लाह इतना सवाब दे रहा, अल्लाह के पास सवाब रखा हुआ नहीं है। ये नहीं है कि मैं इतना दूंगा, ये वो बोलेगा जिसके खजाने में कमी है। अल्लाह हमेशा गैर हिसाब अता करता। तुम एक सलवात से आज शबे जुमा जब घर को जाना तो जितने मासूम बच्चे, माओं को बोल रहा, लड़कियों को, लड़कों को, घर जाना व्हेन यू गो बैक, आज ये एक सलवात या 5 सलवात। कार में बैठते हो, जब तुम ड्राइव करते हो कार को, बच्चे तुम्हारे साथ हैं तो क्या बात कर रहे हैं, बोलो बाबा आज 5th मुहर्रम थी, हम मस्जिद से आ रहे, पूछो व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखा मस्जिद में, उसके बाद बोलो 5 सलवात पढ़ो गाड़ी में। अब कब पढ़ के बोलो कि परवरदिगार इसका सवाब आज शबे जुमा है, थर्सडे नाइट है, मेरे मरहूमीन को दे दो। तुम यकीन करो जब तक तुम गाड़ी में, जितनी दफा जब भी तुम गाड़ी कार ड्राइव कर रहे, जिस काम के लिए जा रहे, आज तो मैं सवाब का बोला ना, अब दूसरा सुनो इसका फायदा। सुबह में तुम ऑफिस से जा रहे, ऑफिस के लिए जा रहे, या कोई बिजनेस डील लेने जा रहे, या कोई एग्रीमेंट साइन करने जा रहे, या कोई टेंडर सबमिट करने जा रहे, 1000 तुम्हारे चीजें, जिस मकसद लिखा हुआ है कि जिस काम के लिए तुम जा रहे, जिस मकसद के लिए तुम जा रहे, वो मकसद में तुम कामयाब होगे अगर तुम 5 सलवात पढ़कर मरहूमीन को बख्शोगे और ये बोलोगे कि इसका सवाब कम तमाम मोमिनीन को दे दे अल्लाह, तो उसका फायदा यह होगा कि 1 मिलियन को अगर 5 सलवात का तुमने सवाब भेजा तो वो 5 मिलियन को वो 1 मिलियन लोग हाथ उठा के अपने अपनी जगह से, अपनी अपनी ग्रेव से, अपने अपने सेमेट्रीज से, ग्रेवयार्ड से हाथों को उठा के बोलते कि अल्लाह इस बंदे की तरफ से, इस मासूम लड़के की तरफ से, इस मासूम लड़की की तरफ से रहमत हमारे पास आई, अल्लाह इसके बाप के जितने गुनाह है माफ कर दे, इसकी बाप की जिंदगी में जितनी रुकावट है, जितने ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने हर्डल्स हैं, तू उसको माफ कर दे और इसको इनके मकसद में कामयाबी दे, इसलिए कामयाबी दे कि हम तकलीफ में थे, इसने हमारी तकलीफ दूर की, अब तू इसकी तकलीफ दूर कर दे। कितनी देर हुई? 5 मिनट। इफ यू स्पेंड दिस 5 मिनट्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इन बॉम्बे, बच्चों के जरिए से। इस्लाम यही बोल रहा कि काम करो बच्चों के साथ। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये पूरा रिजवी कॉलेज का अशरा मैं कामयाब हो गया। कल की या परसों की मजलिस के बाद वो मोमिन यहां बैठा हुआ है, उसने वादा किया कि मैं ये अमल शुरू कर दूंगा। मैं नहीं बोलता नहीं क्या करूंगा, जो मैं चाह रहा था वो चेंज हो गया। फीमेल क्राउड में से भी व्हाट्सएप आए कि मौलाना वी हैव स्टार्टेड दिस, पेरेंट्स की माओं के कि अपनी औलाद के साथ हम वी स्टार्टेड सीटिंग नाउ। 5 मिनट बैठ रहे हम, वी आर सिटिंग फॉर 5-10 मिनट्स। क्यों? मैं यही बोल रहा कि मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो एक मैसेंजर हूं, मैं तो मासूमीन के शेइंग्स को आपके सामने लाके प्रेजेंट कर रहा, फायदा आपका होगा। जो मैं चाहता था आज 5 दिन के अंदर, जस्ट 5 डेज के अंदर मैं कामयाब हो गया। कि एक भी चेंज हो जाए तो यह पूरा अशरा कामयाब हो गया। एक चेंज नहीं हो रहा, उसकी नस्ल चेंज हो रही, उसका घर चेंज हो रहा, उसका जनरेशन चेंज हो रहा, वो जिस चीज को बताएगा वो चेंज हो रहे, तो एक पूरा माहौल बनेगा जैसा इमाम अली आपसे चाहते। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी आपसे, जो मैसेज मैं आप तक दिया। 50 मिनट की मजलिस होगी, मेरा टाइम हो गया। मौला आपको आवाज रखे। इतनी टाइट मजलिस नहीं थी कि आवाज ही नहीं निकल रही। हाँ, मोमिनीन यार, अब ये बच्चे जो नारे हैदरी कर रहे, किसका सवाब जा रहा है इसको? इनके माँ बाप को। माँ ने सिखाया ना नारे हैदरी बोलना, ये इन्वेस्टमेंट है उन माओं का, उन बाप का जिन्होंने इन मासूम बच्चों को नारे हैदरी सिखाया। दे नो हु इज अली, दे नो व्हाट टू से, ये कितना सवाब है। आप सब ने, इतने हजार आदमी ने याली बोला, जरिया कौन बना ये मासूम बच्चा? इसके जरिया कौन बने? इनके माँ बाप बने, माँ बाप बने। माँ को फायदा हुआ जिसने सिखाया, बाप को फायदा हुआ जिसका बेटा है। ये मासूम बच्चे जो नारे हैदरी बोल रहे या सलवात पढ़ा रहे, उनको तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अल्लाह इतना करीम है कि जब मासूम की जबान से निकलता है उसको फौरन कबूल करता। ये जरिया बन रहे पूरे मजमे को अली बोलने पे, या अली। एंड यू नो, तुम्हारी जबान से जब या अली निकलता तो वो एक अजर अजीम है, एक सवाब है। तो बच्चों को सिखाओ। आप सोचो, सो सिंपल अमल इसने किया, इसके माँ बाप को आज पता नहीं चल रहा, आज उनको मालूम एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन उनके अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया। ऐसे जब लोग आएंगे रोजे मैशर और उनका अमालनामा खुलेगा तो वो लोग बोलेंगे, परवरदिगार हमने इतनी नेकी की नहीं, ये आया कहां से? तो बताया जाएगा कि तेरी औलाद जो तू फुलां वक्त करता था, तेरी औलाद की वजह से अल्लाह ने तेरे अकाउंट में डाल दिया। मौला आबाद रखे। मेरा टाइम प्लीज, मेरे हाथ में ये बुक है अनफाल की, लास्ट ईयर मैंने ऐलान किया था, यहाँ उनकी टीम पूरी बैठी है, बॉम्बे वाले, ये लोग बॉक्स देते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। जो आपसे लेते, बॉक्सेस घर में लेके जाते, घर में रखो और डेली उसमें जो भी डालना है डालो, इनका आदमी आएगा कलेक्ट करेगा। बेहतरीन सदका भी हो रहा, बेहतरीन इमाम की जान का भी सदका हो रहा, आपका भी हो रहा, रिस्क में बरकत भी हो रही, और कितने लोगों को ये लोग तकसीम कर रहे बाहर, पूरे इसमें डिटेल्स है, मैं मजलिस में तो नहीं बोल सकता, बट ओनली आई रिक्वेस्ट यू के टेक द बॉक्स, कीप इट इन योर हाउस, एंड जो आप डालते डालो, उनसे बात कर लो, पूरी टीम बाहर बैठी हुई है टेबल पे, उनसे बात कर लो। एक सलावत पढ़ लो, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्त, बस 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 बस, सब माँ बाप को मिल गया फायदा, सबके माँ बाप दे शुड फील प्राउड कि उनके बच्चे नारे हैदरी करवा रहे। माशाल्लाह, जियो बच्चों, जियो तुम लोग, माशाल्लाह। आई नो कल से तुम लोग अंदर रहोगे, नहीं तो वक्त रिजी कॉलेज में वक्त किधर जाता पता नहीं चलता। 55 मिनट्स मुझे ख़त्म करना है मजलिस को। दोस्तों, आज 5 मुहर्रम गुजर गया दिन, 6 की रात आ गई। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोला, नहीं कि 6 मुहर्रम की रात आ गई, कल की एक रात बाकी है बस। परसों की रात जो आएगी, हुसैन के बच्चों के पास एक ड्रॉप वाटर नहीं रहेगा, एक ड्रॉप। कितनी आसानी से मैंने ये जुमला बोला, प्यास। आज जो हजारों सबीले बॉम्बे में लगी हुई है, पूरी दुनिया में, ये क्यों लगी हुई है सबीले? उस प्यास की याद है जो हुसैन के छोटे छोटे बच्चों की प्यास थी। जब भी कोई सबील को देखो, उसके सामने से गुजरो, तो रुको एक मिनट, थोड़ा सा पानी पियो, थोड़ा सा पानी पियो, और हुसैन की प्यास को याद करो। हो सकता उस सबील के पास हुसैन की सकीना खड़ी हुई हो सकता उस सबील के पास हुसैन के बच्चे खड़े हुए हो, हुसैन के नाम की सबीले सारी दुनिया में फैली हुई है। दोस्तों, कितनी तेजी से ये मुहर्रम गुजर रहा, पता ही नहीं चल रहा कि 5 मुहर्रम भी गुजर गई है, अब 6 मुहर्रम की रात आ गई। 6 मुहर्रम की रात, शबे 6 है आज। हर तरफ एक शहीद का जिक्र होता है पूरी दुनिया में, और वो शहीद है ये कि जिसके शादी के अरमान जैनब को थे। समझ गए आप? समझ गए? आज से खामोश रोने की रातें नहीं हैं, तड़प के रोने की रातें, कर्ब के आलम में रोने की रातें। आज उस शहीद का जिक्र है जिसकी आवाज पे हुसैन कभी उठते थे, कभी जमीन पे बैठ जाते थे। हुसैन ने सबकी लाशें उठाई, एक लाश ऐसी थी कि जिसको उठाने के लिए, मेरे मौला हुसैन का जुमला है कि बेटा तुम्हारी आवाज ने मेरी आंखों के नूर को खत्म कर दिया, मैं ब्लाइंड हो गया बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वो लाल है हुसैन का कि जो सूरत और सीरत में रसूल जैसा था। शबे आशूर जब हुसैन लैला के खेमे में गए, तो अली अकबर माँ के जानू पे सर रख कर लेटे हुए थे, माँ जुल्फों को सवार रही थी और कह रही थी, मेरे लाल कल ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। बेटा शादी के अरमान थे, लेकिन हाय कल ये चेहरा। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। सुबह हुई, बीबी जैनब ने कहा कि भैया आज अजान अली अकबर से दिलवाइए। हुसैन ने कहा, मेरे लाल तुम्हारी फूफी की ख्वाहिश है। आप अंदाजा लगाओ कि जब अली अकबर ने अल्लाह अकबर कहा, तो सारी सैदानियों ने हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार हाय उस माँ की क्या हाल हुआ होगा कि जब अली अकबर की आवाज सुनी, तो लैला ने जरूर दुआ की होगी कि परवरदिगार मेरे बच्चे को सलामत रख। कायनात के जर्रे जर्रे ने गवाही दी कि बेशक किब्रियाई अल्लाह के लिए। सुबह से मौला हुसैन चाहते थे कि उनका जवान बेटा जाए, लेकिन असाब आगे बढ़ गए, कहा हमारे होते हुए अली अकबर नहीं जाएंगे। कासिम का लाशा पामाल हो गया। ओनो मैंने क्या कितनी आसानी से बात कर रहा, ओनो मोहम्मद की लाशें खैमे में आई, अब्बास के दोनों शाने खता हो गए। अब हुसैन है या अली अकबर है, आज इसी तरह तड़प के रोना, तड़प के रोना। अल्लाह तुम्हारे जवान बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, जिनकी माओं की गोद में बच्चे हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। शबे छः मुहर्रम है, रिजवी कॉलेज बॉम्बे में इतना बड़ा मजमा आज की रात पुरसा देने आया है। दोस्तों जब कोई नहीं रहा, अली अकबर ने आके ज़ईफ बाप से कहा, बाबा अब आप मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। आप सोचो ये जुमला हुसैन ने सुना तो क्या हाल हुआ। हुसैन ने कहा मेरे लाल पहले जाके अपनी माँ से और फूफी से इजाजत लो। अली अकबर खैमे में आए, शहजादी जैनब के पास आए, कहा फूफी अम्मा मरने की इजाजत दीजिए। तो जैनब ने तड़प के कहा मेरे लाल क्या इसी दिन के लिए 18 साल से पाला था कि तुम मौत की मरने की इजाजत दे दूं। लैला के पास गए, माँ के सामने जाके सर को झुका के बैठ गए। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा, सर को झुका के बैठ गए, कहा बेटा क्या चाहते हो। तो कहा कि अम्मा मरने की इजाजत दीजिए। बस ये सुनना था, लैला ने कहा बेटा मैं कैसे इजाजत दूं, बेटा मैंने तुम्हें 18 साल पाला, शादी करना चाहती हूँ। बस अब अली अकबर ने देखा कि माँ इजाजत नहीं दे रही, एक जुमला कहा अम्मा ये बताइए कि रोजे मैशे दादी फातिमा भी होंगी और आप भी होंगी। अगर दादी फातिमा पूछे कि क्यों लैला तुमको अली अकबर अजीज था, मेरा हुसैन अजीज नहीं था। मौला आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। क्या मेरा हुसैन अजीज नहीं था, तो आप क्या जवाब देंगी। लैला खड़ी हो गई, कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। दोस्तों बीबियों ने इजाजत तो दे दी, बीबी जैनब और जनाबे लैला ने, लेकिन हमीद ये कहता है कि जब अली अकबर बाहर आ रहे थे तो खैमे का पर्दा उड़ता था, जमीन पे गिर जाता था, उड़ता था गिर जाता था, ऐसे मालूम होता जैसे हुसैन के घर से जवान की मैयत निकल रही। अली अकबर निकलना चाहते, बहने घेर लेती, कभी लैला आके कहती मेरे लाल एक दफा सूरत बता दो, कभी सकीना दामन पकड़ लेती, कभी जैनब कहती बेटा सूरत बताओ। शहजादा बाहर आया, मैं भी रुक रुक के पढ़ रहा इसलिए कि फुरसे की मजलिस है, शबे छः मुहर्रम है, आज ऐसा फुरसा हो कि लैला आपको दुआ दे। हुसैन ने अली अकबर के सर पे रसूलल्लाह का अमामा रखा, दोष पे रिदा डाली, हाथ से तलवार दी, बाजू थाम के घोड़े पे बिठाया, फिर हाथों को उठा दिया। बूढ़ा बाप हाथों को उठा के कहता है परवरदिगार तेरी राह में मैं उसको भेज रहा हूँ जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा था। अरे जब भी मैं नाना की ज्यारत करना चाहता मैं अली अकबर को देख लेता। अली अकबर को खुदा हाफिज का शहजादा चला, जब चला तो अली अकबर ने यह महसूस किया कि कोई पीछे आ रहा है, पलट के देखा ज़ईफ बाप कमर को पकड़ा हुआ, अब्बास के बाद हुसैन की कमर टूट गई, कमर को पकड़ा हुआ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे। अली अकबर रुक गए, रुक के कहा बाबा आपने तो रुख्सत कर दिया था। तो उस वक्त हुसैन ने अजीब जवाब दिया, कहा अली अकबर तुम अगर साहेब औलाद होते तो कभी नहीं कहते, बेटा पलट पलट कर देखते जाओ, दरवाजे पे तेरी माँ खड़ी हुई है। मौला आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। आज इसी तरह पुरसा देना, अली अकबर का मातम है, अली अकबर का मातम है। शहजादा मैदान में आया, हुसैन खैमे के दरवाजे पे ठहरे हुए, बेटे की जंग देख रहे। थोड़ी देर गुजरी, लैला खैमे के अंदर से हुसैन के चेहरे को देख रही। लैला ने महसूस किया कि हुसैन के चेहरे का रंग बदल रहा। हाथों को जोड़ के कहा, मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? हुसैन ने कहा, लैला तुम्हारा बेटा भूखा और प्यासा है, उसके सामने एक नामी पहलवान आया है। लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती। लैला तुम दुआ करो कि अली अकबर कामयाब हो जाए। अजीजों ये करबला की अजीब दुआ थी। लैला खैमे के अंदर आई, जमीन पे बैठ गई, बालों को परेशान किया, हाथों को उठा के कहा कि ए याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरे यूसुफ को मिला दे। मौला आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। अली अकबर वापस आए, आने के बाद एक जुमला कहा कि बाबा प्यास मारे डालती है। हुसैन ने कहा, अली अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। शहजादे ने जबान दी और पीछे हट गए और कहने लगे, बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। बाबा हुसैन ने कहा, जा मेरे लाल, तुम्हारे दादा तुमको सैराब करेंगे। शहजादा मैदान में आया, मैदान में आया। हुसैन ने पलट कर लैला से कहा, लैला अब दुआ नहीं करना। लैला कहती है कि मैं खैमे के अंदर से हुसैन के चेहरे को देख रही थी और मौला हुसैन की निगाह मैदान की तरफ थी। माँ कहती है कि थोड़ी देर के बाद शहजादे की खूब जंग है, बहुत जंग की, बहुत जालिमों को मारा, बड़ी तलवार चलाई। लैला कहती है कि थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हुसैन के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा, रेड होने लगा, इतना रेड हुआ कि चेहरे पे सुर्खी नुमाया हुई। लैला ने हाथों को जोड़ के पूछा, मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? हुसैन ने अजीब जवाब दिया। हुसैन ने कहा, लैला शुक्र करो, कुर्बानी कबूल हो गई। अभी अली अकबर की आवाज आई, अब जो हुसैन मैदान में चले, कभी उठते थे कभी जमीन पे बैठ जाते, कहते वालदी हुसैन किधर आए बेटा। जब अली अकबर तक पहुंचे तो जवान बेटा एरिया लगा रहा था। मलाबाद रखे। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मैंने मजलिस खत्म कर दी। हुसैन घोड़े पे से उतरे नहीं, घोड़े से जमीन पे नहीं उतरे हुसैन, बल्कि घोड़े से अपने आप को जमीन पे गिरा दिया। गिरा के रुखसारे पे रुखसारा रखा अली अकबर के और कहा, मेरे लाल तुम्हारा बाबा आया। जवाब नहीं आया। हुसैन ने अली अकबर के शाने को हिलाया, हिला के कहा, बेटा बाबा आया है। जवाब नहीं मिला। हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई, अली अकबर के पहलू में लेट गए, हाथों को उठा के कहा कि परवरदिगार गवाह रहना, मेरा बाजू बराबर का लाल है। हुसैन उठे, देखा अली अकबर ने दोनों हाथ सीने पे रखे। हुसैन ने हटाना चाहा, अली अकबर ने फिर रख लिया, फिर हटाना चाहा, इसलिए कि अली अकबर जानते हैं मेरा बाबा बिल्कुल अकेला है, मेरा बाबा मेरे सीने का जख्म नहीं देख सकता। मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। तीसरी मर्तबा हुसैन ने जोर देकर हटाया। अब जो हटाया तो देखा सीना जख्मी है, सीने के अंदर बर्छी है, उसकी नोक नजर आई। अब हुसैन क्या करे? बूढ़ा हुसैन, बूढ़ा हुसैन, सुबह से लाशें उठाने वाला हुसैन। हुसैन ने आस्तीन को ऐसा उल्टा, नजफ का रुख किया, कोहनी पे बैठकर या अली कह के बर्ची को निकाला। अजीजो अली अकबर दुनिया से चला गया, लाशें को लेके खैमे में आए, ज़ैनब अली अकबर की लाश पे गिर गई, कहा मेरे लाल 18 साल पाला था तुम्हारा लाश। परवरदिगार शहजादे अली अकबर के मसाइब का वास्ता, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। परवरदिगार शहजादे के मसाइब का वास्ता, हमारी ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए, ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी नस्लों की, जनरेशन की हिफाजत फरमा। जन्नतुलबकी, जन्नतुलमौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया कर दे। मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा। जमाने के इमाम को सलामत रख, इमाम के सदक़े में जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनको सलामत रख, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख। आज मुहर्रम की आज साल की पहली जुमेरात है, फर्स्ट थर्सडे नाइट, शहजादे अली अकबर के मसाइब का वास्ता। अल्लाह दुनिया भर में जहाँ जहाँ मेरे मौला का चाहने वाला दफन है पूरी दुनिया में, और जिसकी भी आज पहली रात है शहजादे अली अकबर के मसाइब का वास्ता, उसकी रात और उनकी खबरों में रहमतों का नाजिल फरमा। परवरदिगार रिजी साहब के वालिदैन और उनके बच्चों के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हर बीमार को सेहत कामिला अता फरमा। हमको सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मजलूम का जिक्र करें, और जब भी अपने मजलूम का जिक्र करें उस जिक्र को बीबी जहरा की बारगाह में कबूलियत तक पहुँचा दें। इमाम के जहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा रिजवी साहब के वालिदैन और उनके दोनों बेटों के लिए, और आज एक मोमिना का, एक जाकिर हुसैन की वाइफ का इंतकाल हुआ अतिया जैदी, उनके लिए ये आज उनकी पहली रात है सूरह फातिहा।